उस्वे हसना। ये दुनिया 17 बार तबाह होकर दोबारा आबाद हुई है। होता यह है कि समंदर के नीचे की जमीन ऊपर आ जाती है और शहरों में बसी हुई आबाद जमीन समंदर के नीचे चली जाती है। 17 या 18 बार ये जमीन जेरे समंदर जा चुकी है। ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, अभी जारी है। पहली मर्तबा जब जमीन तह आब आ गई तो इंसानी आबादी थी न, चौपाए थे न, परिंदे थे, कुछ भी नहीं था। कुदरत ने चाहा कि बे आबाद जमीन आबाद हो, तो आदम व हव्वा जमीन पर उतरे। यूं भी कहा जाता है कि जमीन में से मखलूक उग आईं, जैसे बरसात में घास पूस उग आती है और खूबसूरत सुर्ख मखमली बेर बहूटी जमीन पर रींगने लगती है। आदम की औलाद जैसे जैसे बड़ी, बस्तियां वजूद में आई और पूरे पूरे शहर जमीन के माथे का झूमर बन गए। आदम का शऊर बहुत कम था, वो नहीं जानता था कि गोश्त का शोरबा और रोटी क्या है। इसे आसाइश व आराम के लिए रोटी और फोम के गद्दों और गुदास कालीन का भी कोई इल्म नहीं था। कानून कुदरत के तहत आदम की नस्ल 2, 4, 4 से 8 और इसी तरह जब हजारों से तजावुज करके लाखों तक पहुंची तो शऊर भी लाखों गुना हो गया। शऊर की ताकत में इजाफा हुआ तो आदम के बच्चों ने जड़ें, नापुख्ता फल और कच्चा गोश्त खाने में कराहियत महसूस की। हाजमे के ऊपर ज्यादा बार पड़ा और पेट दर्द की शिकायत आम हो गई तो शऊर ने आदम की रहनुमाई की। गोश्त पका कर खाना चाहिए, गंदुम पीस कर आटे की रोटी बनानी चाहिए। शऊर बराबर आदम की रहनुमाई करता रहा। कानून ये है कि जब शऊर एक हो या हजार हो, किसी नुक्ते पर मरकूज हो जाएं, तो कुदरत ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि इसका मुजाहरा होगा। इज्तिमाई शऊर ने कुदरत के सिस्टम में हलचल मचा दी। लाखों आदमियों में से एक ने गैर इख्तियारी तौर पर 2 पत्थर उठाए, इनको आपस में टकराया। टकराने से हरारत पैदा हुई तो पत्थरों में से चिंगारी निकली। चिंगारी की चमक ने शऊर को इस तरफ मुतवज्जो किया कि चिंगारी सूखी घास को जला डालेगी, और देखते ही देखते आग भड़क उठी। जमीन पर इंसान का यह पहला दिन था जब इंसान हैवानात से मुमताज हुआ और इसने इस ईजाद से अपने लिए खाने पकाने शुरू किए। हैवानात से मुमताज होने के बाद इंसान के जहन में नए नए ख्यालात ने जन्म लिया और हर ख्याल इसके लिए एक ईजाद बन गया। आदम और हव्वा के आने से पहले भी जमीन मौजूद थी। जमीन के असल वारिस 2 मखलूक हैं, जिन्नात और इंसान। जिन्नात ने जब जमीन पर खून खराबा किया और जमीन की कोख उजाड़ने की हर तदबीर पर अमल किया तो कुदरत ने जमीन को फसाद जदा करार दे दिया और जिन्नात से जमीन की सरदारी छीन ली। लेकिन सितम जरीफी ये हुई कि आदमजाद ने वही किया जो जिन्नात बरसों से करते चले आ रहे थे और जिसकी वजह से इनसे सरदारी छीन ली गई थी। भाई ने भाई को कत्ल कर दिया और सिलसिला दराज होता चला गया। हजरत आदम ने जिंदा रहने के लिए जो कवानीन बनाए, कौम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। आदम को गुजरे जब 1642 साल गुजर गए, इस वक्त नूह अलैहिस्सलाम पैदा हुए। सारी नौ इंसानी इस वक्त बुत परस्ती में लग गई थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक तौहीद की तबलीग करते रहे। कुरान में इनकी तारीफ अब्दुश्शकूर कहकर की गई है। पानी के हर घूंट और हर लुकमे पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। 950 बरसों तक तबलीग करने पर 80 मर्द और औरतें ईमान लाए, बाकी कौम ने इनकी नसीहत पर अमल नहीं किया। इस पादाश में कौम पर अजाब नाजिल हुआ। जमीन को फसाद से पाक करने के लिए आसमान से इतना पानी बरसा कि जमीन और समंदर एक हो गया। गांव, गोठ, कस्बे, शहर डूब गए। समंदर ने जमीन को निगल लिया। पूरी कौम गर्क आब हो गई, बेटा भी हलाक हो गया। 80 मर्द और औरतें जो ईमान लाए थे अजाब इलाही से बच गए। जमीन 6 महीने तक पानी में डूबी रही। तूफान खत्म होने पर कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी। ईमान लाने वाले सलामती के साथ कश्ती से उतरे, लेकिन इनकी नस्ल न चल सकी। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हाम, साम और याफस जो कश्ती में सवार थे, इनसे आदम की नस्ल का दोबारा आगाज हुआ। हाम छोटे बेटे थे, साम मंझले और याफस बड़े बेटे थे। आज की दुनिया में जहां भी, जिस रंग की भी, जो नस्ल आबाद है, वो इन्हीं 3 भाइयों की औलाद है। नूह अलैहिस्सलाम ने 1400 साल की उम्र में वफात पाई। कुरान करीम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र 71 बार आया। इब्राहीम सुरियानी जबान का लफ्ज़ है, जिसके मानी मेहरबान बाप के हैं। कहा जाता है कि आदम के 3300 साल के बाद पैदा हुए। इनका बाप बुत तराश था। बाप ने बेटे को घर से निकाल दिया। इब्राहीम को इसके रब ने कई बातों में आजमाया और वो हर आजमाइश में पूरे उतरे और साबित कदम रहे। आदम अलैहिस्सलाम के बाद इन्होंने काबा शरीफ बनाया। जिस पत्थर पर खड़े होकर काबे की बुनियाद को उठाया, वो पत्थर अभी तक मौजूद है, जिसको मकाम इब्राहीम कहते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 175 साल की थी। जब हज़रत इब्राहीम की उम्र 86 बरस की हुई, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम 100 बरस के थे कि फ़रिश्तों ने बिशारत दी और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इनका नाम कुरान करीम में 17 जगह है। इनकी 180 बरस उम्र हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में 36 जगह आया है। इनकी वालिदा हज़रत मरियम का नाम कुरान में 34 जगह आया है। इंजील आसमानी किताब इन पर नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की हिदायत के लिए ज़मीन के चप्पे चप्पे पर हादी और पैगंबर भेजे, जिनकी तादाद कमोबेश 1,24,000 है, जबकि कुरान करीम में 25 पैगंबरों का जिक्र आया है। नोट: पैगंबरान की उम्रों का तायुन रिवायात के तहत किया गया है। 22 तखलीक कायनात ताजदार आलम सैयद मुरसलीन खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इंजील में फारकलीत बयान हुआ है, जिसका तर्जुमा अहमद है। हर आसमानी किताब में इनकी आमद की इत्तला दी गई है और बताया गया है कि एक निजात दहंदा आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल बनी आदम व जिन्नात के लिए कयामत तक रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शरीयत दी गई, वो कयामत तक मुकम्मल कानून है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर खामोश रहते थे, बीमारों की आयादत करते, जनाजे के साथ जाते, अपने घर का काम काज खुद करते। मक्का मुकर्रमा में 40 साल के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया, तो अहले मक्का को दावत तौहीद सख्त नागवार गुजरी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कदर तकलीफ़ें उठाईं और जिस कदर इन्हें सदमे पहुँचे, वो बयान से बाहर हैं। जब तकालीफ व मसाइब की इंतहा हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से हिजरत फरमाई और अपने अजीज़ व अकारब, घर बार, माल व मता की ज़रा बराबर भी परवाह नहीं की। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हमरा मक्का से मदीना हिजरत फरमाई, इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 बरस थी। अल्लाह ने अपने महबूब को बड़े बड़े मौजज़े अता फरमाए। शक्कुल कमर का मौजज़ा, मौजज़ा शक्कुल कमर तमाम मौजज़ों से बड़ा मौजज़ा है। अल्लाह ने अपने आप को रब्बुल आलमीन फरमाया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुलिल आलमीन बनाकर कायनात से मुतारिफ करवाया है। 9 के अफजल बंदे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने पास बुला लिया और ख़ुद से इतना करीब कर लिया कि 2 कमानों का फासला रह गया या इससे भी कम। अल्लाह ने अपने बंदे से राज व नियाज में कहा और फरमाया, हमने अपने महबूब बंदे से राज और न्यास की बातें की और हमारे बंदे ने जो देखा झूठ नहीं देखा। सैयदना हुजूर अलैहिस्सलाम ने नहायत मशक्कत, मसाइब और परेशानी बर्दाश्त करके अपनी उम्मत को प्रोग्राम अता किया, वो खालिस तौहीद है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो तुम अपने लिए चाहो वो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। जहां तुम चार हो वहां पांचवां अल्लाह है। अल्लाह तुम्हारी रगे जान से ज्यादा करीब है। अल्लाह हर शय पर मुहीत है। काफिर को बुरा न कहो। दूसरे मजाहिब के उलमा का एहतराम करो, इन्हें बुरा न कहो, वरना वो भी तुम्हारे उलमा को बुरा कहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बुराई का बदला बुराई से नहीं देते थे, बल्कि मुआफ और दरगुजर फरमा देते थे। अल्लाह की किताब कुरान करीम में बड़ी वजाहत के साथ बयान हुआ है, आपस में तफर्रुका न डालो। सन 11 हिजरी माह सफर के आखिरी दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। बुखार की शिद्दत से जिस्म में नातवानी इतनी ज्यादा हो गई कि बाहर निकलने की ताकत न रही और करीबन 4 रोज़ बीमार रहकर पैगंबर आखिरुज़्ज़मां अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी बरोज़ पीर बवक्त चाश्त रहमतुलिल आलमीन के तमाम औसाफ़ हमीदा के साथ अपने दोस्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर तशरीफ़ ले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुजूरी के वक्त आपकी उम्र 63 बरस और 5 दिन थी। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का जो हाल है वो ये है कि साबिका उम्मतों के जिन अमाल व किरदार की वजह से अजाब इलाही नाजिल हुआ वो सब के सब उम्मत मुस्लिमा में मुश्तरका तौर पर मौजूद हैं। जिस तरह दूसरी उम्मतों ने अपने पैगंबरों से और अपने पैगंबरों की तालीमात से रू गर्दानी की और बुराइयों पर इसरार किया था, मुसलमान कौम भी ऐसे ही किरदार में मुब्तिला है। झूठ आम हो गया है। कम तोलना, मिलावट, ब्लैक मार्केटिंग, नफरत, हसद, कत्ल व गारत गरी जिंदगी में इस तरह सराइयत कर गई है कि अब इससे रास्तकारी की भी कोई सूरत नज़र नहीं आती। एक कलमा गो दूसरे मुसलमान को न सिर्फ काफिर कहता है बल्कि इसके कत्ल से भी गुरेज नहीं करता। हर शख्स माया जाल में गिरफ्तार होने को खुशकिस्मती समझने लगा है। मौत के बाद की जिंदगी बेवकत हो गई है। एहसास गुनाह खत्म हो गया है। अल्लाह ने सूद को अपने साथ दुश्मनी करार दिया है। गोया के कुरान कहता है कि जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं और अल्लाह के लिए खर्च नहीं करते, इन लोगों के लिए अजाब अलीम की बिशारत है। मगर हाल ये है कि हमारे उलमा, दानिश्वर और मशायख इस सिलसिले में कोई मुस्बत जद्दोजहद नहीं करते। अल्लाह का कानून अटल है। तमाम हुज्जत की तकमील होने के बाद लाजमन कानून कुदरत हरकत में आता है। बेशक हमारे नबी रहमतुलिल आलमीन हैं, मगर अल्लाह का कानून भी जारी व सारी है। अल्लाह इस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम खुद अपनी इस्लाह के लिए जद्दोजहद नहीं करती। अगर हम रहमतुलिल आलमीन की रहमत के सहारे आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ इन बुराइयों को, जिन बुराइयों से दूसरी उम्मत अजाब इलाही से हलाक हो चुकी है, छोड़ दें, तफर्रुके से बाज आ जाएं, तो अजाब इलाही से बच सकते हैं। खातमुन नबीयीन दो जग के ताजदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के उस्वाए हसना को अपने ऊपर मुहित करने के लिए ज़रूरी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी है हम भी इसका अमली मुजाहरा करें।